سو آئیے خدا کے کلام میں سے پڑھیں ایک آیت اور چند باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہللویا. اب کراچی کی بجلی کی سچویشن کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر جب سے یہ سیمینار شروع ہوا ہے تین دفعہ یا چار دفعہ بجلی جا چکی ہے, ایک ایک گھنٹے کے لیے, ہر گھنٹے کے بعد بجلی جا رہی ہے. اس لیے ہم نے جتنی بھی جلدی ممکن ہو اس کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے اور پھر اگلے پروگرام کی طرف ہم نے جانا ہوگا. آئیے بائبل میں سے پڑھیں یوحنا کی انجیل, اس کا چوتھا باب اور اس کی 24 آیت. 23 آیت سے میں شروع کروں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے, کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. آئیے دعا کریں. خداوند خدا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے مقدس کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند خدا, میں دعا مانگتا ہوں اس وقت تیرے کلام کے لیے, اپنے نام کی خاطر اپنے کلام کو نازل کر اور اے خداوند ہماری مدد کر. ہم تیرے کلام کی سمجھ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں خداوند, ہم تیرے بھیدوں اور مکاشفوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تیرے ان بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو آج وقت نکال کر تیرے کلام کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہللویا, تیرا شکر ہو. ہیلپ اس, بلیس اس لارڈ. یسو کے عظیم نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین, آمین, آمین. جس موضوع پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آج ہم غور کریں وہ نیچر آف گاڈ ہے, خدا کی فطرت کے بارے میں, خدا کون ہے. اس بات پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. ویسے اگر خدا کی ذات کے بارے میں انسان بیان کرنا چاہے تو یہ ناممکن سی بات ہے, کیونکہ خدا اتنا عظیم خدا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس عظیم خدا کے بارے میں بیان کر سکے. ہم اتنا کچھ جانتے ہیں جتنا بائبل مقدس کے اندر خدا کے کلام میں ریویل کیا گیا ہے, جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں انہی سے ہم خدا کی نیچر کے بارے میں جان سکتے ہیں. سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کیا ہے. یوحنا کی انجیل چوتھے باب کی 24 آیت میں میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ خدا کیا ہے. جاگ رہے ہیں سارے, خدا کون ہے, خدا کیا ہے, واٹ از دا نیچر آف گاڈ. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. خدا روح ہے. جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ خدا کسی ایک جگہ پر مقید نہیں ہے کہ وہ بس یہاں پر ہی ہے اور باقی جگہوں پر نہیں ہے. روح ہوتے ہوئے خدا کائنات کے ہر گوشے میں, ہر حصے میں موجود ہے. چاہے آپ کہاں بھی چلے جائیں خداوند خدا وہاں پر موجود ہے. وہ روح ہے. وہ آسمانوں کے آسمانوں میں بھی نہیں سما سکتا. سلیمان نے جب ہیکل بنائی تو یہ جملہ اس نے کہا کہ خدا اتنا عظیم خدا ہے, اتنا بڑا خدا ہے کہ وہ پوری کائنات کے اندر سمایا ہوا ہے. خدا روح ہے, خدا ہر جگہ موجود ہے اور وہ اتنا بڑا خدا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کائنات پر ہی غور کر کے ہم حیران ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں انسان نے ایک خلائی سیارہ, وہ جو کیوریاسٹی ایک آلہ ہے, روبوٹ اس کو کہا جا رہا ہے, وہ مریخ پر بھیجا. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ रोबोट 13,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता हुआ गया और 8 महीने तक चलता रहा और इसके बाद वो सतह के नजदीक पहुंचा और फिर जब मरीख के मदार में दाखिल हुआ तो इसकी रफ्तार 21,000 किलोमीटर फी घंटा हो गई और फिर ये वहां तक पहुंचा और कितने 57 करोड़ मील फासला ये तय करके 8 महीनों में वहां पर पहुंचा और ये नजदीक जमीन के नजदीक तरीन सैयारा है जहां तक इंसान ने उस चीज तक को उतारा है, वो आलात उतारे हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाएं बाकी सारी कायनात कितनी बड़ी होगी और हमारा खुदा इससे भी बड़ा है क्योंकि वो सारी इस कायनात का बनाने वाला है और वो पूरी कायनात में समाया हुआ है। सो अगर आप नेचर ऑफ गॉड के बारे में सोचना शुरू करें तो आदमी का दिमाग बंद हो जाता है, आदमी सोचता कैसा अजीम खुदा है। सो हकीकत में इंसान के बस की बात नहीं है कि इस खुदा को पूरे तौर पर समझ सके, हमें उतना सही समझ आता है क्योंकि हम महदूद हैं, छोटा सा जहन रखते हैं। जितना खुदाबंद खुदा अपने कलाम में हम पर जाहिर करता है उतनी ही बातें हैं जो हमें समझ में आती हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाता है जब मुझे यह बात समझ में आती है कि जिस खुदा की मैं प्रस्तुति करता हूं वो अजीम खुदा है, वो कायनात को मामूर किए हुए है और वो रूह है, हर जगह मौजूद खुदा है। इसी बात को तो ज़बूर नंबर 139 में दाऊद ने कहा, उसने कहा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, मैं अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है, अगर मैं समुंदर की तह में चला जाऊं तो तू वहां पर भी है, अगर मैं अंधेरे में चला जाऊं तो तारीकी भी तो इसे छुपा नहीं सकती है, खुदाबंद उजाले में भी तू है, गर्ज खुदाबंद खुदा हर जगह मौजूद है। खुदा के बारे में बड़ी बात जिस पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहता हूं, जोर देना चाहता हूं, वो ये है कि जिस खुदा की हम प्रस्तुति करते हैं उसको अगर हम बयान करना चाहें तो खुदा रूह है, खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा सबको जानता है, ओमनीशियंट है, ओमनीप्रेजेंट भी है और ओमनीशियंट भी है, फिर वो तमाम कुदरत वाला खुदा है, सरचश्मा है सारी कायनात की कुदरत का, वो खुदा अजीम खुदा है। लेकिन जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं थोड़ा सा वो ये है, वो खुदा वाहिद खुदा है, एक ही खुदा है जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं। हम मसीही लोग कितने खुदाओं को मानते हैं? बाइबल मुकद्दस में की जो बेसिक आयत है, सुन इसराइल खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, और बाइबल में भी लिखा हुआ है कि वो अकेला ही आसमानों को तानता है और जमीन को बनाता है। उसने कहा जब मैंने जमीन की बुनियाद रखी, अय्यूब से कहता तू कहां पर था, सो किसने जमीन की बुनियाद रखी? खुदा ने। वो कहता कौन मेरा शरीक हुआ? खुदा एक है और उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं, वो अकेला ही खुदा है जो ये सारी कायनात बनाने वाला खुदा है। सो बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मसीही लोग एक से जायद खुदाओं को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कितने खुदाओं को मानते हैं? एक खुदा को। सुन इसराइल खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदावंद है और उसी एक खुदा से हमने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से मोहब्बत रखनी है। खुदा अगर एक है तो फिर बाप और बेटा और रूहुल कुदस ये क्या हैं? ये तो तीन ना हुए। मेरे ख्याल में मैं सिंपल सा जो मुझे इसकी समझ आई है, हल इसका ये है कि एक ही खुदा है जो बाप है। जब इंसान जिसने सारी कायनात को बनाया तखलीक के एतबार से वो हमारा बाप है, पैदाइश की किताब में उसने सब चीजों को बनाया, वो बाप है। मलाकी की किताब के अंदर लिखा है, क्या एक ही खुदा ने हम सबको नहीं बनाया और हम सबका एक ही बाप नहीं है? जब इस इंसान को जो गुनाह में गिर गया था बचाने का मरहला आया, वो टाइम आया, तो वही खुदा मुजस्सम होकर इंसान बनकर इंसानी सूरत में हमारे दरमियान रहा, और इस इंसानी सूरत में आए हुए खुदा को हम बेटे की हैसियत से पहचानते हैं। भाई यीशु है तो खुदा जो मुजस्सम होकर आया। बाइबल में लिखा ना, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ यानी खुदा मुजस्सम हुआ। सो उस इंसानी सूरत में जब वो है, इस ह्यूमैनिटी को हम बेटे की हैसियत में पहचान देखते हैं। और पाक रूह, खुदा है ही रूह, सो जब वो रूह की सूरत में आता है तो वो खुदा से कोई अलहदा हस्ती तो ना होगी, वो तो खुदा ही है जो रूह की हैसियत में आता है, रूह की सूरत में आता है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि बाप और बेटा और रूहुल कुदस एक ही खुदा के तीन जहूर हैं, जो तीन मुख्तलिफ जमानों में आपको काम करते हुए नजर आते हैं। क्रिएशन में वो बाप है, सालवेशन के अमल में वो बेटे की सूरत में काम करता है, और अब जब नई पैदाइश का मरहला है, रीजनरेशन है, तो वो रूह की सूरत में काम करता है। खुदा एक ही है, खुदा में एक से जायद शख्सियतों का या उसके अंदर जो एक से जायद पर्सनैलिटीज हैं, ये कॉन्सेप्ट खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। मैं फील करता हूं कि जब बाइबल कहती ना सोने इसराइल खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही है, तो वो अददी एतबार से एक खुदा की बात हो रही है। सो खुदा एक है। अब वो एक खुदा खुदावन यीशु नासरी जब इस दुनिया में था, वो इंसानी सूरत में आया, तो ये बड़ा अहम नुक्ता है, बड़ा अहम पॉइंट है। मेरे ख्याल में हमें इसको समझना जरूरी है कि मसीह यीशु की जात में जब वो इंसानी सूरत में इस दुनिया में था, दोहरी नेचर है, ड्यूअल नेचर जिसको कहा जाता है। यीशु खुदा है और वो इंसान भी है। उसके अंदर आपको इंसानी सिफात भी नजर आती हैं और यीशु के अंदर आपको इलाही सिफात भी नजर आती हैं। दोनों बातें हैं, और कई दफा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसको खुदा से अलग हस्ती समझना शुरू करते हैं। नो, ऐसी बात नहीं है, एक ही हस्ती है, उसी के अंदर ड्यूअल नेचर है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, खुदावंद यीशु ने बाइबल के अंदर लिखा है सलीब पर लटके हुए ये बात कही, उसने कहा मैं प्यासा हूं, उसे प्यास लगी। मत्ती की अंजील में लिखा 40 रोज तक फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब भूख और प्यास का लगना ये इंसानी नेचर को जाहिर करता है। क्या खुदा को भी भूख लगती है या वो प्यासा होता है? ना, इंसान होते हुए उसे भूख लगी और उसे प्यास लगी, लेकिन खुदा होते हुए वो औरों की भूख को मिटाने वाला यीशु है। बाइबल के अंदर लिखा वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सब जानदारों को शेयर करता है। वही खुदा है जो 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेता है, उन पर बरकत देता है, तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को देता है, क्योंकि उसने कहा था मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता हूं। वो खुदा औरों की भूख को मिटाता है खुदा होते हुए, लेकिन एट द सेम टाइम खुद भी भूखा नजर आता है। इंसान होते हुए वो दुआ करते हमें नजर आता है। गेतसमनी बाग में यीशु ने दुआ की, क्या दुआ की? है बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। दुआ की कई जगहों पर बाइबल के अंदर आपको रिकॉर्ड मिलेगा जहां खुदावंद यीशु ने दुआ की। अब अगर यीशु नासरी बाप से अलहदा हस्ती है तो फिर तो काम खराब है, क्योंकि यहां तो फिर एक खुदा दूसरे खुदा के आगे दुआ करते नजर आता है, और वो खुदा कैसा खुदा होगा जिसको खुद औरों के आगे दुआ करने की जरूरत हो? ऐसी बात नहीं है कि एक शख्सियत दूसरी शख्सियत के सामने दुआ कर रही है। इंसान होते हुए ह्यूमैनिटी डिविनिटी के आगे दुआ कर रही है, इंसान होते हुए वो दुआ करते हमें नजर आता है, लेकिन खुदा होते हुए वही यीशु कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से जो चाहोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। खुदा होते हुए वो दुआओं का जवाब देने वाला है, इंसान होते हुए वो खुद हमें दुआ करते नजर आता है। एक और नुक्ते पर गौर करें, बाइबल में लिखा हुआ है, फिर यीशु सफर से थका मांदा होकर सामरिया के उस कुएं पर बैठ गया, थक गया। वैसे खुदा थकता है? बाइबल में क्या लिखा है, इसराइल का खालक ना थकता है और ना मांदा होता है। खुदा थकता नहीं है, खुदा बदन, ये इंसानी बदन थोड़ा रखता है कि वो थक जाए, खुदा तो नहीं थकता, लेकिन यीशु थक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसान इंसान होते हुए ये बदन वो थकता है जिसके बारे में बाइबल में लिखा ना, तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। वो बॉडी है जो थकती है, खुदा वो रूह जो उसके अंदर था वो नहीं थकता है। और सबसे बड़ा सबूत के यीशु इंसान है, यीशु नासरी सलीब पर मर गया। खुदा मर सकता है? खुदा नहीं मर सकता। अगर अलूहियत उस बदन से अलहदा ना होती तो वो सारी उम्र भी उसको सलीब पर लटकाए रखते, खुदावंद यीशु कभी नहीं मर सकता था, नहीं मर सकता था। लेकिन जब उसने कहा ना, मेरे बाप है मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है मेरे खुदा है मेरे खुदा, अलूहियत जुदा हुई है, तो फिर इंसान होते हुए ही कुड डाए। यीशु मर गया लेकिन खुदा होते हुए वो जिंदा है और अब तक जिंदा। उसने कहा देख मैं मर गया था और अब्दुल आबाद जिंदा हूं, बल्कि हमेशा हमेशा तक मैं जिंदा हूं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं, ये नुक्ता जानना जरूरी है कि वो खुदा भी है और वो इंसान भी है, और ये दोनों चीजें एक ही हस्ती में। जरा गौर करें इस हवाले पर, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। बेटा है, इंसानियत को जाहिर करता है, और उसका नाम अजीब, मुशीर, और आगे क्या लिखा है, खुदाए कादर है। बेटा इंसानियत, खुदाए कादर ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, अलूहियत। अब्दियत का बाप अंग्रेजी में एवरलास्टिंग फादर, एवरलास्टिंग फादर, अब्दी बाप। अब्दी बाप का मतलब क्या है, अब्दी क्या होता है, जो शुरू से हो और हमेशा तक रहे। लेकिन यीशु नासरी बेटे की हैसियत में उसका आगाज भी है और उसका एंड भी है। आगाज पता है कहां से है, बैतलहम में उस चिरनी से जब वो पैदा हुआ तो बेटे का आगाज है। इसीलिए तो इब्रानियों के खत में लिखा है तू मेरा बेटा है, तो आज तू मुझसे पैदा हुआ। इसका मतलब उसके पैदा होने का दिन है, और जिसका पैदा होने का दिन हो वो अजली और अब्दी हो सकता है। फिर अजली और अब्दी कौन होगा, जिसका ना शुरू हो और ना उसका एंड हो। सो इंसान होते हुए, बेटा होते हुए उसका शुरू भी है और उसका एंड भी है, सलीब पर मर गया। लेकिन खुदा होते हुए ना उसका कोई शुरू है और ना उसका कोई आखिर है। अब बात समझ में आती है कि क्यों उन यहूदियों को बात समझ में ना आई जब यीशु ने कहा कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। उसने कहा तूने इब्राहिम को देखा, तेरी उम्र तो भी 30 साल की भी नहीं हुई। यीशु ने कहा बेशतर इससे कि इब्राहिम हो मैं हूं। भाई यीशु इब्राहिम से पहले कैसे था, इंसान होते हुए तो वो बैतलहम से में पैदा हुआ है, लेकिन खुदा होते हुए वो इब्राहिम से भी पहले, पदेश की किताब से भी पहले, वो शुरू से ही है। इसीलिए वो कह सकता है बेशतर इससे कि इब्राहिम हो मैं हूं। वो इब्ने दाऊद भी है लेकिन दाऊद का बाप भी है। लिखा यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष पैदा होगी। वो दाऊद की असल और नस्ल कहा कहता है उसको, दाऊद की असल और नस्ल है। नस्ल तो होगी जो दाऊद के बाद चले और असल जिससे दाऊद निकलता है। तो कहना मैं ये चाहता हूं खुदा होते हुए वो हमारा बाप है लेकिन वो खुदा होते हुए अलूहियत रखते हुए वो बाप है लेकिन इंसानियत रखते हुए जिस्म रखते हुए बेटा होते हुए वो बेटा है। सो मसीह यीशु के अंदर ड्यूअल नेचर है, दोरी फितरत है, वो इंसान भी है और वो खुदा भी है। अब जब ये नुक्ता आपको समझ आ जाए तो फिर जब आप पढ़ेंगे ना कि यीशु यहां पर दुआ कर रहा है तो आपको मुश्किल नहीं होगी कि एक खुदा दूसरे खुदा के आगे नहीं दुआ कर रहा है बल्कि अलूहियत के सामने इंसानियत दुआ करे। ह्यूमैनिटी इज प्रेइंग बिफोर डिविनिटी। हम नेचर ऑफ गॉड के बारे में आज गौर कर रहे हैं, इलाही फितरत। और यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं खुदा की नेचर के बारे में स्टडी करते हुए ये बड़ी जरूरी बात है कि हम ये जानें कि हमें खुदा ने इसीलिए मुकर्रर किया है कि हम उसकी जाते इलाही में शरीक हो जाएं। जैसे हमारे खुदा की नेचर है वो अपने बेटों और बेटियों को भी वैसा ही बनाना चाहता है। हमने किसकी हम शक्ल बनना है? खुदा ने यीशु की हम शक्ल बनना है। खुदा की नेचर के बारे में बात करते हुए एक बड़ा अहम पॉइंट है उसकी नेचर का। हमारा खुदा ना रूह है, ना सिर्फ वो हर जगह मौजूद है, ना सिर्फ वो तमाम कुवत रखने वाला खुदा है, ना सिर्फ वो सारा नॉलेज रखता है बल्कि वो पाक है, होली। आपको पता है जब यसाया देखता है फरिश्तगान खुदा के हजूर में खड़े हैं सराफीम और वो जिस बात का ऐलान कर रहे हैं वो खुदा की पाकीजगी का ऐलान है। क्या कहते हैं? कदूस 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 रब्बुल अफवाज है। सो खुदा की नेचर में जो नमाया चीज है खुदा पाक खुदा है और वो हमें भी अपनी नेचर पर बनाना चाहता है। क्या लिखा है? पाक हो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला खुदा पाक है। खुदा की नेचर को अगर आप जानना चाहते हैं तो यूहन्ना के खत में बड़ी जबरदस्त बात है, खुदा मोहब्बत है, गॉड इज लव। क्योंकि खुदा मोहब्बत है इसलिए वो मोहब्बत करता है, क्योंकि ये उसकी नेचर है वो मोहब्बत करेगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा मोहब्बत है, खुदा पाक है, खुदा गयूर खुदा है, खुदा रास्तबाज खुदा रास्त है। वो अदालत भी रास्ती से करेगा, वो रास्तबाज है, वो हमें भी रास्तबाज बनाना चाहता है। खुदा मोहब्बत है, वो चाहता है कि वही नेचर हमारे अंदर भी हो और हमारे अंदर से भी लोगों को इलाही मोहब्बत नजर आए। सो आज हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं उसकी सारी बरकतों के लिए, इस समझ के लिए जो उसने हमें दी है। और आज इस स्टडी को जान लेने के बाद कि खुदा कौन है, उसकी नेचर कैसी है, खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं कि जिस खुदा की मैं प्रस्तुति करता हूं वो अदल करने वाला खुदा है, वो रास्तबाज खुदा है, वो प्यार से भरा हुआ खुदा है, वो हर जगह मौजूद है और वो इतना अजीम और इतना बड़ा खुदा है कि वो आसमानों के आसमानों में भी नहीं समा सकता। और आप जानते हैं इस खुदा की बड़ी अच्छी बात क्या है, इतना अजीम होने के बावजूद जब हमें बचाने का टाइम आया तो उसने जाहो जलाल और अपनी सारी उस हशमत को एक तरफ रखा और इंसानी सूरत में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خدا کون ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس کو تھپڑ مار رہا ہے, اس کو کوڑے مار رہا ہے, اور اس کے منہ پر تھوک رہا ہے, اور یہ پھر بھی آگے سے کچھ نہیں کہہ رہا, تو ہمارے دل اس کی شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں کہ خداوند تو نے یہ سب کچھ, یہ پستی تو نے میری خاطر اختیار کی تاکہ تو مجھے بچا سکے. ہمیں بچانے کے لیے وہ اس قدر نیچے آ گیا کہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے. خدا کی محبت نظر آتی ہے صلیب میں, خدا کی محبت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کیسا مہربان اور محبت رکھنے والا خدا ہے. سو یہ دعا کریں, اپنے سروں کو جھکائیں خدا کی حضوری میں, اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں. ہللویا.